जो लोग ये सोचते हैं कि अब हमने इस जीवन में कुछ नहीं कर पाया, अगले करेंगे, वो समझिए अगले में उससे बदतर हो जाए। बस खाली उन लोगों को देख के उनसे प्रेरणा लेके उन्हीं को चाहे अपना गुरु समझ लें या गाइड समझ लें, जो भी है, परम पूज्य बाबू जी महाराज साहब के, यानी आप इमेजिन करिए कि 1 किलोमीटर जिसकी माँ 4 साल से इंतज़ार कर रही कि लड़का डॉक्टर हो के आएगा, 1 किलोमीटर पर डेथ हो गई। पिताजी की डेथ हुई, 2 पत्नियों की डेथ हुई, पहला लड़का सबसे वो ज़्यादा उसकी हुई, बस ये था रास्ते पर टिके रहे। तो जिनको आंखें देखती हैं उन्हीं पर भरोसा होता है, उन पर भरोसा होता है। उनने एक लाला जी महाराज साहब को इष्टदेव अपना माना और बाद बाकी हरेक की बड़ी इज्जत की। तो केवल एक रास्ता है, इस एक सेंटेंस पे लाला जी महाराज साहब के पूरा परमार्थ है कि दुनिया में रह के दुनिया के सब काम सुचारू रूप से करते हुए किसी वक्त भी ईश्वर को न भूले। हम सब मनुष्य हैं, हमें कमियां भी हैं, गलतियां भी होंगी, उन सब की तरफ ध्यान ही क्यों देते हैं? बस ये नाम लेते रहिए, नाम में इतनी शक्ति है, सब खत्म हो गया। जो हो चुका उसके बारे में कभी मत सोचिए, वो रिडन हो ही नहीं सकता, सिवा आप उसका संस्कार को गहरा बनाते चले जा रहे हैं। आगे क्या होगा कभी मत सोचिए, ईश्वर बेहतर जानता है आगे क्या होगा। बस एक चीज सोच लीजिए कि हम किसी वक्त भी याद से गाफिल ना हो। अगर याद से गाफिल होंगे तो माया जरूर हमला करेगी। शायद माया तभी तक दूर रहेगी जब तक के मायापति आपके साथ होंगे। हमने अपने गुरु को अपना इष्टमान रखा है, इसलिए उसका वो करते रहिए। सबको एक तरह से नहीं हांका जा सकता, अलग अलग लोगों के संस्कार होते हैं, किसी को किसी चीज़ की लाइकिंग होती है, किसी के किसी चीज़ की लाइकिंग होती है। और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आखिरी सांस तक आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आखिरी सांस तक कर्म करना पड़ेगा। कौन किस वक्त बेराह हो जाए ईश्वर बेहतर जानता है। हर शख्स किसी उस पर भी हो जाए, उसके गिरने के हमेशा चांसेस रहते हैं, क्योंकि हम सब 24 घंटे उसी दुनिया में माया से घिरे हुए हैं। खाली वही शख्स इस भवसागर से तर सकता है जिसके साथ उसका गुरु, दूसरा शख्स सिवा धोखा ही धोखा जो भी हो। तो आप, हमारा आपका केवल काम यही है कि जो काम करें वो सोचते रहे हम उसी के हाल में कर रहे हैं, वो हमारे साथ है और हर वक्त उसे याद करते रहे। इसके अलावा कुछ नहीं करना, ये 2 करने हैं। ब्लाइंड फेथ हो जाए आपको तो बहुत मुश्किल होता है, कहना आसान होता है, बहुत मुश्किल होता है। और दूसरे जिस तरह से भी बन पाए आप आज्ञाकारी बन जाइए। अगर उसके आज्ञा को नहीं मानते, आप अपना करते हैं तो इसका मतलब मनमते हैं। मनमता इसी युग में भी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। और सेवा करते रहिए। हर एक में तीन स्टेजेस हैं जो हमारे गुरुदेव कहते थे, बेटे पहले एक के ऊपर करो, केवल मेरे बारे में सोचो, फिर कुछ और लोग ऐसे बढ़ाओ जिनको मेरी तरह तुम मानने लगो। पूर्णता तब होगी जब हर एक शख्स में, जो सब ईश्वर ने पैदा किए हैं, तो हर शख्स को वैसे ही प्रेम करो उतना ही ठीक। उससे पहले पूर्णता नहीं हो सकती। और ये हर एक ने कहा है, बस लैंग्वेज का फर्क है। ताऊ जी महाराज ने कहा कि भाई किसी एक के हो जाओ, बाऊ जी महाराज साहब ने कहा किसी एक के हो जाओ या उसे बना लो। गुड डू गुड बी गुड, बाद बाकी उन्हें सब बेकार की बातें हैं, जितनी हैं वो सब फिजूल की बातें हैं। फोर्थ ऑल्टरनेटिव भी दिया है कि अगर कुछ ना कर पाओ, मजबूरी हो हर तरह से, तो कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे तुम्हारे पैदा करने वाले की बदनामी। ये एहतियात हर एक को रखनी पड़ेगी। हमारे गुरुदेव ने लिखा, मैं केवल एक प्रेम के रिश्ते को मानता हूं, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे हैं, चाहे वो दुष्टि क्यों ना हो, वो तो आपकी बुराइयों कमियों को देखता ही नहीं है, तब फिर क्यों आप अपनी बुराइयों कमियों को देख रहे हैं। इसी में जिसको जितना टाइम लगता है, जिसको जितना टाइम लगता है, लेकिन ऐसे शख्स आपने नहीं देखे होंगे कि जो सब दुनिया को भोगते रहे, एक जगह तो आपको एक को छोड़ना होगा। दुनिया से आपको हटना होगा, एक जगह आपको राइडर लगाना होगा कि नहीं बस साबित नहीं। और वक्त आखिर में खाली उसी शख्स का स्योरिटी हो सकती है, खाली उसी शख्स को जो हर वक्त हर सांस में ओम नाम का जाप करता रहता है। और इसी को बाऊजी महाराज साहब ने लिखा है, मौत बाखबर हो और बखैर हो। बखैर का मतलब ये, आप नाम लेते रहें और आपको मालूम है कि हमारी मौत होगी, मौत कभी कह के नहीं आती है। और जो पैदा हुआ है उसको मरना भी है। हमारे गुरुदेव इसी को कहते थे, बेटे आप मौत की तैयारी करो, बहुत खेल कूद हो गया। तैयारी यही है कि हर वक्त आप अलर्ट हैं कि किसी वक्त भी आ जाए, हमारे साथ हमारा गुरु है उसकी याद। इसी को लाला जी महाराज साहब ने लिखा है, जिक्र खफी का जाप करो। जिक्र कहते हैं शब्द को जो मनी मन में हो रहा है, खफी मीन्स पोशीदा, कोई देख नहीं रहा आपको। उर्दू का जमाना था, उन्होंने उसी को लिखा, जिक्र के खफी का जाप हर वक्त करते रहिए। ये पहला उनका हिदायत है। गैर जिंस की सोहबत से परहेज रखिए, हक हलाल की कमाई का खाना खाइए। तो जब हम इनमें से कुछ करेंगे तभी तो और उन्होंने करके दिखाया है। वो अपनी गुरु की याद से किसी वक्त भी गाफिल नहीं रहते थे। इसी में से किसी में है, गुरुदेव ने लिखा कि मेरा अखलाक इतना अच्छा नहीं था जिससे लोगों को मुझसे ज्यादा फायदा होता, लेकिन मुझे जीवन में कोई क्षण ऐसा नहीं था जो लाला जी महाराज साहब की याद से खाली रहा हुआ हूं या उनके से व्यथित हुआ हूं। मुझे उन पर पूरा भरोसा था। लिंग मुझे अलग अलग है, जिसने जैसे लिखा, लेकिन अल्टीमेटली यही है। और जब तक स्वयं अनुभव धीरे नहीं करता, धीरे धीरे करके सब चीजों का अनुभव होता चला जाता है, तब तक आंख मन का अहंकार नहीं खत्म होता। तो इन्हीं चीजों को लौट फेर के सबको करना है। बाबू जी एक सेंटेंस कहते थे, बेटे हम और तुम ये देखते हैं कि ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, लेकिन क्या हमने सोचा कभी ईश्वर भी नाराज हो जाएगा अगर उसको नहीं याद करेंगे? तो ये तो जब सोचा ही नहीं तुमने कि वो नाराज हो सकता है, तो तुम्हें डर काहे का है? तुम जानते हो वो नाराज ही नहीं होता। उनको जब कुछ अच्छा कर देता है तो तुम खुद क्रेडिट ले लेते हो, बुरा करता उसे गाली देते हो, तो कैसे उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारे लिए, और वो कितना अच्छा है तब भी तुम्हारी बुराई को नहीं सोचता, वो कितना अच्छा है कि तुम्हारी बुराई के बारे में ही नहीं सोचता। और जब तक बराबर रात दिन का, तब तक हर शख्स को ये समझना चाहिए कि बहुत कुछ बाकी है। जब आदत पड़ जाए और हर वक्त आपके साथ उसकी याद बनी हो, तो ये समझिए लक्ष्य के नज़दीक है। ये जिन लोगों को कि साहब हम दो वक्त कर लेते हैं, हम नियम से करते हैं, हम अभ्यास करते हैं, हमने इतनी मरतबा सिजरा पढ़ लिया, ये सब चीज़ें सही है, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। लक्ष्य की प्राप्ति केवल उसी शख्स को हो सकती है जो हर वक्त अपने गुरु को याद करता रहे और हर सांस में उसकी ओम की आवाज। पहले दिन इसलिए नहीं शुरू बताते हैं, अभ्यासी ये सोचता है सब चीजें एक ही दिन में मालूम हो जाए। हर युग में इसीलिए जीवन भर आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। किसी के टाइम का ले लीजिए, सबसे पहले पंडित ताऊजी महाराज साहब ने पंडित काशीनाथ को दीक्षा दी, उनका कोई पूछने वाला नहीं, वो बेरहा हो गए। भाऊ जी महाराज ने सूरज कुमार लाल जी को दी, जो बेरहा हो गए। तो हर युग में ऐसा हुआ है, किसी युग में नहीं। लाला जी महाराज साहब थे, एक इलाहाबाद के थे, वो उनके साथ भी यही हुआ था। तो वही शख्स जिसके साथ हर वक्त उसका गुरु होगा और उसकी याद होगी, वही शख्स इस भवसागर से तार कर सकता है। बचा हुआ अच्छे काम का बदला होता है, ईश्वर आपको बदला दे देगा। वो बड़ा दयालु भी है, न्यायकारी भी है, वो आपको बदला दे देगा कि अगले जन्म में आपको फिर मौका दे। लेकिन लाला जी महाराज साहब का जो था वो ये था कि किस तरह से इसी जीवन में लेके हम हमेशा हमेशा की जिंदगी को प्राप्त करें। तो कितने अच्छा सहल भी है, और एक पड़ते हैं उससे मिलने के, उस लोक में पहुंचने के बाद आपका कहीं भी जन्म होगा वो आपसे अपने काम के लिए भेजेगा, और जो थोड़ा बहुत रह गया हो उस जन्म का वो भोग के उसके लोक में वापस बुला लेगा। हम नहीं कह सकते कि इस जन्म में हम डॉक्टर हैं, हो सकता है अगले जन्म में कुछ ना बन पाए, लेकिन वो कह सकता है कि साहब हमने देखिए आपने अचीवमेंट किया, हमने अपने काम के लिए आपको भेजा, आपको बुला लिया। और नेचर सब वैसा ही करते जाती है, बस उन्हीं को देखते चले जाइए कि साहब उनको क्या है। जिसको गुरु मानता है उसमें कुछ ना कुछ बड़प्पन जरूर होता है। जिसमें कोई ना कोई गुण ऐसा होता है, वो गुण अपने में डेवलप करने की कोशिश करिए और फिर वो वही आत्माएं होती हैं जो ईश्वर है। माँ की डेथ हो गई, अपने घर पर रहे थे, भाई भाइयों को साथ थे, बना बनाया खाना मिलता था, सब रिश्तेदार जल पहचान के थे। लाला जी महाराज साहब ने केवल एक पर्त कहा कि बेटे हम तुमसे कुछ अपना काम लेना चाहते थे, तुम बड़े चैन से खाना खा रहे और हो रहे। तब फौरन प्रैक्टिस छोड़ के चले गए। कितने लोग ऐसे होंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी, तो उनमें कोई ना कोई उन्हीं लोगों से प्रेरणा लेके आप देखिए कि कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उनके गुरु ने मान। केवल दो एहतियात करने पड़ते हैं, तो खाने का बड़ा एहतियात करना पड़ता है और दूसरे ये सोहबत का बड़ा एहतियात करना पड़ता है। इसी ऐसे शख्स से जिसे ईश्वर को वो नहीं है, लो वो नहीं है, उससे जितना दूर रह पाए, चाहे वो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, बाबू जी ने देखिए हमारी बहन के ससुर लिखते थे कि आप सेठ दिन्ना को कभी नहीं भेजते, आप जान के वो करते हैं। यहां तक उनने लिखा इसका मतलब यह है कि जब हम मरेंगे तो वो लोग आएंगे। बाबू जी लिखा हाँ जब आप मरेंगे तो अवश्य जाएंगे। और फैक्ट यही था कि हम लोग उनकी 13 ही उस पर पहुंचे थे। रिश्तेदार था वो भी लड़की का रिश्ता था, कभी नहीं भेजा। ये नहीं वो जानते थे कि वहां जाकर उस वातावरण से अफेक्टेड हो सकते हैं। दुनियादार होते सोचते अरे साविता बुला रहे हैं, वही लाओ भेज दो, एक पड़ता ही भेज दो। उनके अपने सगे भाई थे, उनसे दूर भागते रहे, जबकि दूसरे दो भाई थे उन कहते थे बेटे अगर खेती का और ना नुकसान हो तो कुछ दिन और रुक जाओ। तो सोहबत का बड़ा भारी होता, चाहे किसी का हो। हम आप देखते हैं ये बुरा मान जाएगा, वो बुरा जान मान जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं देखते कि ईश्वर भी कुछ बुरा मान जाए। फिर जब अपने दामाद को बुलाया तो उन्होंने कहा ना एक केवल एक दिन आना बेटे, तो अपनी ड्यूटी उन्होंने पूरी कर दी, ईश्वर नाम का बीज बो दिया। उन्होंने कहा खाली इतवार को आओ आखिरी दिन, क्योंकि सब लोग आते हैं मिल जाएंगे। और पूजा से उठने के बाद बब्बू से कहते थे बेटे इनके पेट का खाने का इंतजाम कर देना। उस वक्त हम लोग भी हंसते थे, अब सब चीज समझ में आती थी वो क्यों ऐसा करते। आते आते उनमें ईश्वर नाम का बीज हो गया और ईश्वर की दया से सत्संग भी होने लगा उनके यहाँ। अपनी ड्यूटी उनने कर दी, लेकिन खुद ना इफेक्टेड हो, परिवार ना इफेक्टेड हो, सत्संग ही ना इफेक्टेड हो, उसके अलावा उन्हें कभी नहीं घर में घुसने दिया। एक गुरु ही ऐसा शख्स होता है जो आपको हर तरह से दाएं बाएं करके उस भवसागर से निकालने की कोशिश करता है। अगर ना निकले तो वही चाचा जी का एक सेंटेंस, खुद फंसी बुलबुल लाल में क्या खता सयाद की। इन सब चीजों से जिक्र से वातावरण बदल जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उस वातावरण को, बदले हुए वातावरण को हमें बनाना भी होगा। वो केवल सत्संग से है, केवल सत्संग से है और दूसरा कोई, इसीलिए हर युग में सत्संग की बड़ी भारी महिमा गई है। सब लोगों ने ड्यूटी बड़ी अच्छी तरह की जितने थे, बचने के तरीके अलग अलग थे। पहले हम लोग समझते थे डॉक्टर चतुर्वसाय जी बड़े घमंडी हैं, यानी 20 आदमी में से 18 आदमी को तो वो गाली दे के बाहर कर देते थे, उन तुम्हारे पूजा उजा नहीं है। तो जब उनने कहा कि भाई तुमने एक को किसी को पकड़ लिया उसी से वो बात करते थे, उन्होंने भाई मैं ऐसे नहीं बच सकता, मैं अपने को बचाने के लिए बस खाली एक आदमी से कंस करता हूँ। और बटे हुए स्टेशन पर खड़े हुए सबसे नमस्ते की, किसी से उन्हें कोई मतलब नहीं था। तो तरीके अलग अलग थे, जिसने जैसा समझा। हमें आखिरी सांस तक अपने को इन दोनों चीजों का एहतियात करना पड़ेगा, इन दोनों चीजों का। खाने के लिए बाबूजी स्वयं कहते थे बेटे एक दिन भूखे रह गए होते तो मर नहीं जाते। सोसाइटी का कैसा आपका संघ है जिसके साथ आप भूख पड़ सकते हैं, और दूसरा ये खाना, इसके अलावा कोई एहतियात किसी चीज के लिए। न बाबूजी ने कभी कहा, न हमारे गुरुदेव ने भी कहा। जरिए थे उनने कहा बेटे अच्छा याद करने को, उनने कहा देखो इम्तिहान में दोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो शुरू में हर एक को लालच होती थी, उनने कहा ये काम हो जाएगा। तो उसने ये एक वे था सिखाने का, ताकि हर वक्त बेसिस क्या था कि हर वक्त उनको याद को बनाए रहे। उनने कहा खेलोगे तो मैच जीत जाओगे, तो एक लालच थी कि साहब मैच जीत जाएंगे। लेकिन असल क्या था, असल ये थी कि हमारी याद को बराबर बनाए रहो। उन बेटे जब तुमने हमको, हमने किया है तो हम जानते हैं हमने ठीक किया होगा, तुमने किया तुम जानो भाई। तो सब जितने जरिए ये हैं कि आप अपने गुरु की बचे हुए सबकी बड़ी रिस्पेक्ट करिए, सबकी बड़ी रिस्पेक्ट करिए, जो आपसे बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करिए, छोटे हैं उनसे प्रेम करिए। लेकिन एक के पहले हो जाइए, फिर हर वक्त उसकी याद को बनाए रहिए दुनिया के सब काम करते हुए। तो इस सब उस पर छोड़ दिए, जिस रोज उसने पैदा किया है उस रोज हर शख्स की जन्म पत्री लिख दी है, उसमें परिवर्तन कोई नहीं कर सकता। प्रार्थना कोई करे तो इतना हो सकता है कि कष्ट सहने की आप पर शक्ति आ जाए, लेकिन समय और वो कोई नहीं कर सकता। प्रार्थना करना हमारा अधिकार है। परम पूज्य गुरुदेव ने हमारी माँ के लिए, बहुजी ने भी कहा, लेकिन जब जवाब मिल गया कि नहीं इनकी उम्र खत्म हो चुकी है, उसके बाद कभी नहीं सोचा कि हाँ आप कुछ कर सकते। फिर उन्हीं लोगों को, और इसीलिए केवल लाइफ हिस्ट्री पढ़िए, केवल लाइफ हिस्ट्री पढ़िए, उनके प्रवचनों को सुनिए। ताऊजी महाराज साहब ने भी कोई फिलॉसफी की किताब नहीं लिखी, बस खाली यही सब लिखा, कहीं नहीं लिखा चक्र क्या है, कैसे है, क्या है। उन लाइफ हिस्ट्री में से हर एक की निचोड़ के साहब इनने अपने जीवन में कैसे किया, इसको हम कैसे धारण कर सकते हैं, पता जरूर दीजिए कि भाई ये वजह है, ताकि उस मौके आदमी को सुधरने का मौका मिल जाए। नहीं हो बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसके ख्याल को भी छोड़ दीजिए। जैसे हमारे भाई ने, इसने पूछा कि भाई साहब आप हमसे नाराज हैं? बिल्कुल नाराज नहीं बेटे, हम नाराज केवल इसलिए है कि तुमने बाबूजी का कहना नहीं माना। बाबूजी ने यह कहा था कि जो मेरे ही यहाँ के लोग हैं उनकी ड्यूटी है कि साल में मेरे गुरुदेव के यहाँ एक मरतबा गए, तुम नहीं गए इसलिए हम तुमसे दूर भागते हैं कि ये बीमारी हमको भी छूत की ना लग जाए। तुम जाने लगोगे तो हमें तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। असर ये हुआ कि वो खुद आने लगे। तो बता तो जरूर देना चाहिए, लेकिन फिर भी एहतियात रखना चाहिए कि वो बीमारी किसी में लग ना जाए छूत की। जैसे जिसका हो, बेसिस यही है कि आपको अपने गुरु की याद बराबर बनी रहे और ओम का जाप करते रहें, वो भी सांस से कोरिल, शुरू में जमान से कर सकते हैं फिर सांस से। इसी को लाला जी महाराज साहब ने लिखा है, जिक्र खफी का जाप करते रहें। दूसरे ये है कि जो थिंग गुड डू गुड, भलाई को बढ़ाते चले जाए बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी। इन्हीं चार चीजों में पूरा परमार्थ। तो आपको दो चीज करनी है, सेवा करनी है, ब्लाइंड फेथ करना, अपने गुरु की आज्ञा का पालन। दो परहेज करने हैं, गैर जिंस की सोहबत से परहेज कर सको। लाला जी महाराज साहब ने कल लिखा है, गैर जिंस की सोहबत से परहेज करें, यानी जो आदमी बेअतकाद हो उसके पास तक न जाए। और दूसरे ये है, खाने से एहतियात रखें। और दो काम करने, हर वक्त याद करते रहिए और हर एक का भला करते रहिए, इसी में सब परमार्थ। और जिसमें जो हो उससे कोशिश करिए कि आखिर इसमें कैसे बची हुई सब चीजें हमारी ही रह जाएंगी। तो जो साथ जाने वाली है उस चीज की चिंता करिए कि हमारे साथ क्या जाएगा। ना हम कुछ लाए थे ना ले जा सकते हैं, इस कटु सत्य को हरेक जानता है। तो फिर ये ख्याल से हम जुड़े हैं, उस ख्याल को हटा के उसी ख्याल की धार को ईश्वर की तरफ कर दीजिए। अपनी ड्यूटी जो भी आइडियल हो उससे, आपकी परिस्थिति अलग है, आपके बच्चों की गिनती अलग है, हमारे अलग, जिसके भी जैसे हो जो आइडियल हो वो करते रहिए। तो जीवन भी सहूलियत से कट जाएगा और लक्ष्य भी प्राप्ति हो जाएगी, लक्ष्य भी प्राप्ति हो जाएगी और जीवन भी सहूलियत से कट जाएगा। बचा हुआ पार्ट ऑर्गेनाइजेशन का है, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, बासर आदमी है, पैसा है, तो अपने उसे कर लेता है। लेकिन जब इतने बड़े बड़े संत लोग जो हैं दो ही एक आदमी का बेड़ा वो कर पाए, तो ये ख्याल कर लीजिए कि उन दोनों में से आप भी एक बन जाए, जैसे बन जाए, और उससे ज़्यादा उसके गुरु को बड़ी खुशी होती है, वही जानता है। और जब शिष्य नहीं करता या बेराहा होता है तो सबसे ज्यादा उसके गुरु ही को दुख होता। और सत्संगी एक ऐसी चीज है जिससे स्टेबिलिटी आती जाती है। स्टेबिलिटी ऑफ योर थॉट्स इज ए मस्ट। जैसे भी आए,